तो ऐसे कृष्ण है। तो इस तरह से किंतु कृष्ण मानेंगे नहीं, दान दे करके जाना पड़ेगा। वो ध्यान क्या चाहते हैं, मक्खन चाहते हैं ना रुपया पैसा चाहते हैं, प्रेम का दान चाहते हैं। वो प्रेम चाहते हैं, रुपया कभी कभी बिगड़ती हैं, आंख तरती हैं, उनको कटु कटु बातें कहती हैं, किंतु उसी में प्रेम का स्वाद, यही इसी के लिए वो टैक्स चाहते हैं, इसी में परमानंदित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके
दान के लिए चिंतामणि में मधुमंगल खाता लेकर के और लिखने लग गए कि 1000 मुक्ता, 10000 स्वर्ण मुक्ता।
ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं लाखों बार, और कृष्ण उधर देखने रहे हैं, बच्चों के हाथ पर अपना बायां हाथ रख दिया है और दाहिने हाथ से कमल घुमा रहे हैं। उनको कमल का किस लिए घुमा रहे हैं, बहुत दूर पर गोपी है उनको, तेरे तुम लोगों के लिए हमारा हृदय ऐसे या तुम्हारा हृदय ऐसे ही प्रेम में नाचे। तो ये प्रेम की भीख मांगते हैं। कृष्ण एक यही अवतार है जो अपने भक्तों से प्रेम की भीख मांगते हैं, छोटे बन जाते हैं, मैया से भी प्रेम की भीख मांगते हैं, गोपियों से तो बात ही क्या, बिना प्रेम के ये जी नहीं, इनका स्वरूप ही है प्रेम, रसो वैश्य है, इसलिए ये प्रेम चाहते हैं। तो किस रूप में वो प्रेम लेते हैं, वहां पर दान के रूप में उनसे तर्क वितर्क, कभी क्रोधित होती हैं, कभी आंख से आंसू आते हैं, कभी कुछ होता है, एक साथ में सभी प्रकार के भाव, प्रसन्न भी है भीतर से, ऊपर से रोष है, कहते हैं अभी जा रहे हैं हम राजा के पास में नाजिश करने के, इधर प्रसन्न भी है आंख से भी आंसू, जान ही नहीं देंगे। इस तरह से वहां पर प्रेम का टच, गोपियां उनको मक्खन भरपूर लेकर के खिलाती हैं, यही उनका यज्ञ है, वहां पर अब जाने की जरूरत नहीं रही। इस तरह से गिरिराज की गोवर्धन में ये होता है। वहां से आगे बढ़ेंगे, दान निवर्तन कुंड है, दान निवर्तन कुंड का गिरिराज नहीं, निवर्तन कहते हैं जो दान दिया गया फिर उसको लेना या उसके बदले में और लेना। तो गोपियों से वहां पर दान खाटी में दान लिया, तो वहां पर निवर्तन कुंड में क्या हुआ, गोपियों ने कृष्ण से दान लिया, उनको लहंगे पहना दिए, चुनरी पहना दिया, सिर पर मटके रख दिए, उसमें दही भर दिया, जबरदस्ती सेंदूर कर दिया, चोटी बांध दिया, गोपी सजा दिया, और एक पहाड़ के ऊपर में चढ़ करके पर्वत पर गिरिराज पर वहीं से ढेला तान करके महाराज उनकी इसमें लगा, मटकी में लगा, और वो फट गई, कृष्ण स्नान कर लिए, बोले जी आप नहीं करेंगे ना, फिर इसके बाद में उनकी चोटी लेकर के बांध दी पेड़ों में और सखाओं को बांध दिया। ये सब लीलाएं हैं। इसके बाद में आगे पढ़िए शंकर सन कुंड, पासी में गौरी कुंड, गौरी कुंड क्या है, गौरी कुंड माने गौरी का, गौरी कौन है,
चंद्रावली,
उनके तीन स्थान माने जाते हैं, एक तो यहाँ पर गौरी कुंड पर वहां रहती है, जैसे राधा कुंड है वहां पर उनकी नित्य स्थिति कही जाती है, और एक है सखी, सखी स्थली, गोवर्धन के और राधा कुंड के बीच में बाएं हाथ पर सखी स्थली, और एक मेहराना या क्या नाम है, नंदगांव के आसपास में कहीं बरसाना के पास में, वहां पर उनका जन्म हुआ। ये विश्वभानु महाराज जी के छोटे भैया के लड़की हैं, वृषभानु भानुचंद्र, पांच भाई हैं कि चार भाई,
विश्वभानु, बृहद भानु, चंद्र भानु, सुभानु, पांच
भाई, ये चंद्र भानु की लड़की हैं, ए चंद्रावली, राधा जी से उम्र में बड़ी हैं, सिद्धाम इनका भैया है ना, तो सिद्धाम के आजोरी का चंद्रभानु जी की वो चंद्रावली है। उसके बाद में राधा जी यहाँ पर हुई हैं, उनके दूसरे सब भाई, इसलिए चंद्रावली राधा से बड़ी है, गुणों में समान है करी करी, सब गुणों में सुंदरता में, ये दो युद्धेश्वरिया हैं राधा जी और चंद्रावली। और दोनों में भी श्रीमती राधिका जी सब गुणों में वर्यसी हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। ये चंद्रावली जी या सब सखियां राधा जी की काय व्यूह हैं। काय व्यूह मैंने क्या, राधा जी ही कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए ये सब प्रकार की सखियां हुई हैं सभी। विशेष करके चांदे यहाँ पर राइवलरी नहीं है, राइवलरी मैंने प्रतिद्वंदी भावना से ये सब भजन में भी सब चीज में प्रतिद्वंदी हो तो इसी सब में भजन में हम भजन करेंगे वैसा ही, कैसा जैसे रघुनाथ दास को स्वामी किया, हरिदास ठाकुर जी ने की और महात्माओं ने की, ऐसा भजन करें। खेल कूद में भी संसारिक जीवन में भी प्रतिद्वंदता नहीं रहेगी ना, गड़बड़ हो जाएगा। यद्यपि किन बाधाएं नहीं आएंगी तो हम जीवन में हम नहीं उन्नत हो सकते हैं। भगवान ने ये वृद्धावस्था इत्यादि किस लिए बनाई, ये विपत्तियां हैं ना, वृद्धावस्था नहीं होती तो कोई नहीं भजन करता। जैसे बचपन में करवट नहीं फेर सकते, वृद्धावस्था भी जब आ जाएगी ना, जरठ हो जाएंगे तो करवट नहीं फेर सकते, एक साथ में हजार रोग धर लगे, शरीर चिथड़ा जैसा हो जाए। याद दिलाते हैं मरना है तुमको भी, इसलिए भजन करो, या फिर मरने के लिए नहीं आना है। इसलिए भगवान जानबूझ करके हम लोगों को वृद्धावस्था में ऐसे कर देते हैं, असहाय हो जाएंगे, इसलिए समझो हम असहाय हैं, इसलिए सब ऐसी अवस्थाएं। इस तरह से वहां पर सखी स्थान और वहां पर है गौरी कुंड, गौरी कुंड में कृष्ण से उनका मिलन होता है और वहां से रूप मंजरी इत्यादि सखियां उनको निकाल करके राधा कुंड में प्रवेश करा देती हैं। इसके बाद में चलेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, पुछरी में हम लोग पहुंचे, पुछरी में अभी गोविंद कुंड, आज गोविंद कुंड का कुछ महात्म है। एक महात्मा थे ब्रज के, पहले तो कृष्ण लीला में उसी के आसपास में बीच में उन्होंने उठाया था गिरिराज गोवर्धन को, वहीं पर भोग लगा था जतिपुरा में कृष्ण के लिए। और भोग लगने के बाद में इंद्र ने फिर देखा जी हमारी पूजा बंद करा करके ये छोटा सा शिशु उसमें जो श्लोक बोला है ना, स्तब्ध बाचालो बालिशम स्तब्धम पंडिता पंडितम मानी अज्ञमानी अज्ञ है, ये सब उनको इंद्र ने कहा। अस्वस्थी जी ने उसका उल्टा अर्थ लेकर के कृष्ण को भगवत्ता वहां पर स्थापन करा दिया उसी श्लोक। ये इंद्र का मान वहीं पर भंजन हुआ, 7 दिनों तक मूसलाधार पानी हुआ, केवल वही नहीं वर्षा के समय में वज्र पड़ा, उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं और उनको ऐसे मालूम है खुजलाहट हो रही है। क्यों, कृष्ण को जो धारण किया है उसे जो आनंद मिल रहा है स्पर्श से, आनंद में भूल गए जी कहाँ वज्र और कहाँ पानी। 7 दिनों के बाद में इंद्र का मोह भंग हुआ, स्तुति करके वहीं पर उनको अभिषेक किया था, वहीं पर आरावत आकाश गंगा से कलश में सोने के कलश में पानी ले आए और वहीं पर उनका अभिषेक किया, तब से कृष्ण का नाम गोविंद हुआ। इसलिए वहां पर गोविंद कुंड है, उस वहीं पर गोपाल जी विराजमान थे, वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बांस वारी थी, बांस का बगीचा, और वहीं पर वो माधवेंद्रपुरी जा करके बिना किसी से मांगे कुछ और वहीं पर भजन करते थे, हीरा में तड़पते थे रोते थे कृष्ण का दर्शन कर। एक बालक आया, बाबा बाबा तू भूखा है, मेरी मैया तुझे भूखा देख गई, ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता, तू भूखा क्यों, मेरी मैया ने तुम्हारे लिए पान ये दूध दे दिया है गर्म करके आटाया हुआ, तुम इसे पी लेना। उन्होंने देखा जो छोटा बच्चा बड़ा लुभावना तो है और बड़ी मीठी बातें करता है, देख करके भी नहीं देखा, साधु संत लोग भगवान का भजन करने में चित्त कहीं भी इधर उधर जाए नहीं जाने देते, इसलिए जहाँ भी सौंदर्य है उसे अपने दृष्टि को रोकते हैं। इन्होंने देखा जैसे ये छोटा सा बच्चा बड़ा सुंदर शांत है और बड़ी मीठी बोली बोलता है, उसके तरफ में देखा ही नहीं। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा, बाबा तू सुनता नहीं है, मेरी मैया मुझ पर बिगड़ेगी, देरी हो जाएगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ, अभी मेड़ पर जा रहा हूँ, मेड़ माने खेत पर, और वहाँ से लौट करके आऊँगा तो ये बर्तन लेते आ जाऊँगा, तुम इसको पी लेना। जब वो चला गया अब उनकी आंखें उधर ही जा रही है बार बार, और चित्त उधर ही जा रहा है उस शब्द के सुनने के, एकदम आकृष्ट हो गए। उन्होंने उठाया और थोड़ा सा पिया, उसका इतना सुंदर सुगंध और इतना मीठा कि वो एकदम बेहोश हो, अरे मैं तड़पने लगे, अरे वही कृष्ण थे, तड़पने लगे रात भर में। रात में जब थोड़ी सी रात रह गई तो उनको
ज्ञानंजन श्लाघ्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिं बुद्धैव च पतितानां पावनेभ्यो भूयिष्ठेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यं। हे कृष्ण करुणा दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका का राधा कन्हस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वान सुते देवी हनुमान। हा देवी कापू वर गदगदयाद्यवाचा जाचे निपत्त भो विदंडवत गंधर्विकेतौ गणेगण अंगश्यामलिं चटारिरवितो मन्देतुचण्डीकरं जग्गञ्जागुदरोऽपि संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिय वृन्दारण्यनिवासिनं विलसद्गामाभिधा राधासङ्गति भक्तिया परादल मध्ये कृपाता प्रपन्ना नमस्ते गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय यं प्राप्यजन्तमुपेकमपेकृत्यवैपायिनो कुपेति तन्मयतया सर्वो तं सर्वगुरु कवैराश्मि कवैराश्मिपेज्ञाय राधे तन्मां गरष्टक्में नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमनं कलीलाय देवाय तुभ्यं। कृष्ण यदि कह रहे त्वदीय प्रियायै, आपकी प्रिया भी प्रसन्न हो। ये दामोदर पद का पालन करने का मुख्य तात्पर्य ये भी यही है, राधा जी के चरणों में चैतन्य महाप्रभु जी की, रूप सनातन जी की भी, रघुनाथ जी की भी यही सबसे तो होगा कैसे। इसके लिए प्रतिज्ञा हम लोगों को करनी पड़ेगी और साथ साथ भी करना पड़ेगा, खेत को तैयारी करनी पड़ेगी, तब तक फसल बोएंगे, ऐसे नहीं घास पास सबको निकाल करके फेंक देना पड़ेगा। खेत निर्मल हो जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा, तब उसमें इसका बीज पड़ेगा, फिर वो बीज पल्लवित पुष्पित होकर के उसमें फल लगेगा। जिसकी थोड़ी सी रुचि हो गई है भजन में, उनके लिए अपने आप स्वाभाविक रीति से उपदेशानुक्त के श्लोक सब अपने आप आचरण होने लगे, अपने आप उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी भी भजन में रुचि हो गई है, भजन करने से क्या होता है ये सब समझ गए हैं, और भजन करते 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 अब रुचि होने लग गई, तो उसमें उपदेशामृत जो रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत कहा है, पहले तो कड़वा लगेगा ये, तो पीछे इसमें अमृत होगा। संसार की चीजें जो है वो आपात मधुर हैं, और ये पहले कुछ कड़वा किंतु पीछे में बड़ा अमृत ही है, इसलिए उन लोगों में स्वाभाविक रूप में ये शक्ति है। आज जो प्रथम साधक हैं, प्रथम अवस्था से चल रहे हैं, जिनका कोई संस्कार नहीं है पूर्व जन्म का, बहुत थोड़ा संस्कार है, वैष्णव का समूह भी बहुत कम हुआ है, या संग करते हैं तो जैसे अभी सो रहे हैं सपने बच्चे लोग ऐसे सो रहे हैं, बहुत पाठ से इन लोगों का कोई भी संबंध नहीं, आचरण से भी कोई संबंध नहीं, उन लोगों के लिए ये सब पालन करना जरूरी है। इसलिए जो सच्चे साधक हैं उनमें तो स्वाभाविक रूप से ये उपदेश रहेंगे, पालन करने की इच्छा स्प्रिया रहे अपने आप, उनको समय नहीं है इस सब के लिए, जिनका स्वभाव की रुचि हो गया समय ही नहीं, बाचो वेग क्रोध वेग मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान योगी सहित सर्वाम इमाम प्रथम सशिष्य, उनके लिए कोई अपने आप वो आचरित होने लगता है स्वाभाविक। आज जिनको ये सब चीजें नहीं है, अभी रुचि नहीं है विषयों के प्रति, भोग के प्रति, आलस्य प्रमाद ये सब, इन लोगों के लिए ये सब करना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी ने जिन्होंने भक्ति गोस्वामी सिंधु लिखा, उज्जवल विमान लिखा है, हंस दूतम लिखा और सब क्या क्या लिखा है, और उन्होंने ये सब लिखा क्यों लिखा, ऐसे ही नहीं लिख दिया, वो समझते हैं कि ये सब अनर्थ हैं, इनसे दूर रहने की चेष्टा करनी चाहिए, इसलिए ये सब चीज़ों के प्रति खूब सावधानी देनी चाहिए। हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है इसका कारण यही, हम लोग उसके लिए चेष्टा करें, इसलिए प्रथम अवस्था में साधकों को चेष्टा करनी चाहिए, और जब भजन में जब रुचि हो जाएगी तो वो अपने आप स्वाभाविक, उसके लिए कोई चेष्टा करने की जरूरत नहीं। इसलिए उपदेशात्मक के वचनों का हमको पालन करना चाहिए, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एक वेगान जब सहेत दिया बी सहेत दिया सर्वमान प्रतिशत। जो लोग बात के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जीवा उदर और उपस्थ इन सब वेगों को विषहेत, विषहेत मैंने कह विशेष रूप से जो सह लेते हैं, ये विष के समान है, पीड़ा होगी इनमें किंतु उनको सह, खुजलाहट खूब लग रही है किंतु मत नख लगाओ, नहीं तो एक जगह अभी है तो वो सब अंगों में फैल करके एकदम दूषित मारे हृदय को कर देगा। इसलिए हाथ को अभी बंद करके रखो, हाथ दोनों को बांध दो, किसी आदमी को जब खुजली हो जाती है बच्चे बच्चों को तो उनका हाथ भी बांध देते हैं, ऐसे ये खुजली मचेगी इन सब चीजों की छह वेगों की, किंतु बुद्धिमान पुरुष जैसे बीस को भी हजम कर देता है ऐसे इनको भी हजम करने की चेष्टा, सहने की चेष्टा करेगा, बाप वेद सबसे भयंकर है, इसलिए पहले कहा ये समस्त जितने वेद हैं वो समस्त वेदों की जड़ ये बाप है। अपने वचनों पर कंट्रोल करो, जो अपने वचनों पर कंट्रोल नहीं रखता है उसका परमार्थ एकदम निश्चित है। जब मुख में जैसे तैसी बातें आ जाए तभी वो निकाल दे, ऐसा नहीं, कंट्रोल। जब कभी कोई बात इच्छा आई अवश्य, जब कोई लगाम नहीं अंकुश नहीं इस पर, तो उन लोगों का भजन होना बड़ा कठिन। ये कैसे होगा? निरंतर यदि हरि नाम करे, निरंतर हरि कथा सुन, बाद में उठने का कोई समय नहीं रहता। मन सह सिर नीचा करके सुनो, ऊपर नमक करना नहीं तो आ जाएगी ना उसमें स्फूर्ति हो जाएगी, संक्रमित हो जाएगी, इसलिए सिर को नीचा करके सुनो। मन का वेग, इसका प्रवाह बड़ा कठिन होता है। मन के वेग को धारण करने की चेष्टा करो। धारण माने क्या? मन का वेग धारण करो माने क्या? मन में तरह तरह की आकांक्षाएं लालसाएं ये सब उठ रहे हैं, उसमें क्या करना चाहिए? करो हरि नाम रव,
उच्च स्वरे करो हरि नाम,
उच्च स्वरे जोर से करो। कोई बदमाशी की नियत आ रही है मन के अंदर में, जोर से हरि नाम, वैष्णव के निकट में बैठ जाओ, कुछ हरि कथा सुनो, अपने आप वो नहीं। कोई ग्रंथ ले लो, रूप गोस्वामी का, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, जीव गोस्वामी का, रघुनाथ दास गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर जी का पहले, ये सब चीज करो। एक तो नारायण प्रभु को यहाँ मन का वेग कैसा है? ऊपर में नहीं दिखाई देगा, फल्गु जैसा, नदी जैसा, भीतर में प्रचुर पानी है, अथाह अनंत पानी और प्रवाह है। ऊपर से नहीं मालूम होने देगा क्रिया से, ऊपर से एकदम साधु हैं, बैठे हुए हैं, अब भीतर में भोगों का प्रवाह करता है। ये भजन में सबसे बड़ा है। ये कैसे दूर होगा? गुरु वैष्णव की सेवा में निष्कपट चित्त से। क्रोध वेगम, मन के वेग को जो धारण करने में समर्थ नहीं रहेगा और वाणी पर जो अंकुश नहीं रहेगा, जैसे तैसे बोलेगा, लोगों से झगड़ा हो जाएगा, फिर क्रोध होगा, मन का वेग संभाल में नहीं आएगा, इसलिए क्रोध वेग को दूर करना जरूरी है भजन के लिए। क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी चित्त को शांत रखना है, इसको शांति कहते हैं। ये कैसे होगा? क्रोध हो रहा है, बाल में आ रहा है और उसको कैसे सहन? उस समय भगवत भक्ति के बिना, भगवान नाम के बिना, भगवत कथा का स्मरण के बिना ये नहीं आएगा, इसलिए उस समय में जोर से हरि नाम संकीर्तन का निश्चय। किसी वैष्णव की सेवा में लग जाने चाहिए, ठाकुर जी की सेवा में लग जाने चाहिए, क्रोध देखो दूर किया जाए, अन्यथा ऐसे हम अपने मन से दूर कर दें दूर, ये संभव। मन के वेग के तरंगे आती हैं, जैसे समुद्र में तरंगे आते हैं, सावधान आने पर भी तरंगे गिरा देती हैं। अब विशेष करके जो अधिक पारंगत अपने को समझता है उनको वो तरंगे क्या करती हैं, समुद्र के बीचों बीच में लेकर के ऐसे डुबा देती हैं, आने ही नहीं देती, एकदम चक्का जाता है। रघुनाथ रघुनाथ जो समुद्र के किनारे थे, इन लोगों को पता हो, एक बार हमारा गौ उनके साथ में कौन था,
जाना
बाबू, वो स्नान कर रहे थे तो गौ ने कहा चलो चलो थोड़ा सा यही पर, दो हाथ आगे गए
कार्तिक पूर्णिमा
और इतने में पूर्णिमा के दिन
व्रत समाप्त
भीतर सहसा थे, क्या आप भी लेकर के चला गया, मालूम ही नहीं हुआ, अब आ ही नहीं सके, प्राण जो कि अब मरे, अपनी नुनिया जो है उनको हाथ उठाया ऐसे वो गए तो किसी प्रकार से प्राण बचाए। 1000 रुपया मांग रहे थे तो किसी प्रकार से 500-600 रुपया दे करके, ऐसे ये तरंग है, समुद्र की तरंग ऐसे है, तो मन की तरंग कैसी है? वो सुखकर तरंग होंगी, मन को ऊपर से बड़ी सुखकर लगती है, अच्छी लगती है, उसमें से बचाना नूनिया तोनिया कोई नहीं बचा सकता है। उसको बचाने वाले यदि हैं कोई समर्थ, यदि भजन समृद्ध गुरु और वैष्णव यदि है, भगवान को यदि पुकारा जाए तो वो बचा सकते। इसलिए क्रोध का एक ये साधारण नहीं है, बड़े बड़े मुनियों के मन को मत देता है, विशेष करके हम लोगों का क्रोध कंट्रोल में नहीं रहा। जब क्रोध का बस झाड़े भगवान का भजन कब होगा? चित्त शांत रहेगा तब तो ये भजन होगा, इसलिए इनको भी दूर करना जरूरी है। जीवा देवम, जीवा का देव, अधिक व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तरह तरह से टेस्टफुल चीजों को ग्रहण करना, लालसा ठाकुर जी का भोग उतरा और रख दिया इधर उधर, भाजा भूजी परमान्य लोटिया में भर लिया, कहीं पर कुछ मिला तो उसको पॉकेट में रख लिया, दूसरे किसी को नहीं दिया, जो कुछ मिले भाई बांट करके खा लो, जो कुछ भी मिले अपने, बल्कि मतलब थोड़ा सा करना चाहिए, जैसे महाप्रभु कहते थे ऐसे ही नहीं कर दिया, भालो भालो पीछा पानना और रसगुल्ला मलाई जैसे वैष्णव को, और हमको क्या दो, बस लपटा ऐसा ही रखो। नहीं तो जीवा देव के द्वारा क्या होगा, उधर वेग बढ़ जाएगा, और उधर वेग बढ़ने से क्या होगा, उपस्थ वेग आ जाएगा, अवश्यंभावी है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। उपस्थ वेग माने, उपस्थ वेग माने स्त्री पुरुष की लालसा, ये सब जरूर बढ़ेगा, कामना बढ़ेगी। इसलिए जहां तक हो सके शरीर में कोई रोग हो जाए तो वो अच्छा है, और शरीर पुष्ट हो जाएगा उसको रक्षा करना बड़ा कठिन है। इसे साधारण रूप में भजन उपयोगी न उधर न इधर मत, बीच बहे, बीच में बहे जमुना धीरे धीरे, हाँ ऐसे ही उतमे ललिता उतमे भी शाखा, आप बीच में
राधा चले
चले धीरे धीरे, ऐसे ही रखो, न उधर में जाओ न इधर में, बीच में रहो, ऐसे ही ठीक से भजन करना होगा, मध्यम भाव से। न विषय में भोग की लालसा रहे और न हृदय शुष्क हो जाए वैराग्य को बदले, बीच की स्थिति भक्ति के लिए उधर उपस्थवे एतान वेगा, ये जो 6 वेग हैं, जब धीरा विषय जो धीर व्यक्ति है वो उसको सहन करेगा। साधारण लोगों के लिए जिसकी धी नहीं है, धी मैंने क्या, स्थिर बुद्धि जिनकी हो, वो तो इसको सहलेगा, कौन सहेगा जो हमारे गुरु परंपरा की धारा में भजन करता है, और बाकी सब लोग हरिदास ठाकुर जी उसमें स्थिर रहे, दूसरों के लिए ये स्थित रहना बड़ा भारी है। इसलिए जहां तक हो इन सबको सहने की चेष्टा करनी चाहिए, भजन के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से। क्रोध आ रहा है, पानी पी लिया, हरे कृष्ण करने लगे, प्रभु को भीम भीम होकर के पुकारने लगे, इसी प्रकार से सब विषयों को समझो। सर्वाम अपि इमान, 20 ये 20 हैं, मरेंगे भजन राज्य में हमारी मृत्यु हो जाएगी, इसमें शंकर जी सह सकते हैं, दूसरे नहीं सहेंगे, इसलिए इसको भी इसमें सूचित करना चाहिए, ये 20 हैं इनको सहना है। कैसे सहना है? भगवत भजन के बल से, गुरु वैष्णव की सेवा के माध्यम से। यदि कोई कर लिया ऐसा तो सर्वाम अपि इमान पृथ्वी, सर्वाम इस पृथ्वी को भी वो शिष्य कर सकता है, वो गुरु है। अजिन इनकी इंद्रिया वशीभूत नहीं है, छोर को दमन नहीं कर सकता है, वो 1,00,000 गुरु का शिष्यों का गुरु हो या गुरुओं का गुरु हो वो भजन नहीं कर सकता है। इसलिए वही व्यक्ति शिष्य नहीं करने पर भी शिष्य करने पर भी समस्त पृथ्वी को शासन कर सकता है, शासन में शिष्य कर सकता है। सभी लोग रूप गोस्वामी ने कितने आदमी को दीक्षा दिया किंतु विश्व उनको रूपानु कहने में अपने को समझता है, हाँ हमारी महिमा है, उसमें जीवन सार्थक समझता है। सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, ये हमारे आदर्श हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कोई कोई सन्यासी कहते हैं जैसे भाई सन्यास हमने लिया है तो यदि विवाह किया है तो संतान तो जरूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, विवाह हुआ तो जरूर होना चाहिए। माने आचार्य हमने सन्यास लिया है केवल शिष्य पैदा करने के, यदि शिष्य नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों के मन में ऐसी भावना नहीं आए करती कि हम लोग सन्यासी ब्रह्मचारी इसलिए शिष्य करना हमको चाहिए, ये मत समझ, भजन करना उसका उद्देश्य है। शिष्य करने में जीवन की सार्थकता नहीं बल्कि उसमें बहुत बात है। हम लोग शिष्य नहीं करते भी और देख करके देख रहे हैं समझ रहे हैं, इसलिए धर्म में कभी रुचि नहीं जाए। हम लोग रूप सनातन जी का हमारे गोस्वामियों का ये हम लोग देखेंगे पृथ्वी का वही गुरु है जो कि इन सब चीजों को शासन करके भजन करता है, वो यथार्थ गुरु है। ये बतला रहे हैं राधा नाम के कोई गोस्वामी उनके टीका कर बलदेव अभिन्न नित्यानंद प्रभु महाविष्णु के अवतार अद्वैताचार्य राधाचार्य शक्ति पर और शिवास आदि परकरों के सहित श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करके तब इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं संक्षेप में। ये टीका जो अखिल विश्व की निखिल शक्तियों के मूल आधार हैं चैतन्य महाप्रभु जी, मैं श्री रूप गोस्वामी की अत्यंत श्रद्धापूर्वक वंदना करता हूं जिनका श्रृंगार रस ही सर्वस्व है। रूप गोस्वामी का राधा कृष्ण के उन्नत उज्ज्वल प्रेम रस स्वरूप श्रृंगार रस का वर्णन ही जीवन का सर्वस्व है। रूप गोस्वामी जो राधा गोविंद जी के चरण कमलों की सेवा में ही सर्वदा सदा निमग्न रहते हैं, प्रेम की प्राप्ति के लिए हमको ये सब करना होगा साधन के लिए। रूप गोस्वामी जी प्रारंभ से करता है, उद्देश्य क्या है श्रृंगार रस उसकी प्राप्ति, किंतु साधन कहां से करना है नीचे से, अभी उसके लिए जमीन तैयार करना है, प्लेटफॉर्म तैयार करना है, आ नहीं तो वो धरा रह जाएगा बल्कि उल्टा फल हो जाएगा। इसलिए इन सबको पालन करने की चेष्टा करो भजन राज्य में। हम लोग मठ में आए तो गुरु जी ने हम लोगों से कहा उपदेशामृत मन शिक्षा शिक्षास्त्र ये सब चीजों को करना, इन सबको हम लोगों ने मुखस्त किया है आचरण करने के, इसलिए इन्होंने प्रारंभ में इन्होंने ये सब शिक्षाओं के लिए कहा। अंत में वो गोपाल भट्ट जी को प्रणाम करके कलयुग पावन अवतारी हरि नाम और भगवत प्रेम प्रदान कर कुतल जीवों को उद्धार करने वाली करुणा प्रणालय श्री चैतन्य महाप्रभु को पुनः प्रणाम करता है। कहते हैं पद्म पुराण में से जिगरूप गोस्वामी जी ने उद्धारण किया एक लिया है, शोकामर्ष आदिभिर भावै अक्रांतम जस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना से। जिनके हृदय में शोक माने क्या है, हमारी कोई चीज नष्ट हो गई उसके लिए शोक, भाई हमने जीवन बर्बाद कर दिया इसलिए बर्बाद कर दिया, देखो तो हम लोग क्या क्या मिल रहा है ना क्या मिला, विवाह शादी करके नौकरी करके रहते प्रचुर वैभव हम लोगों को रहा था, गाड़ी में चलते घर में वो सब लगा रहता है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अभी कुछ हो रहा है कि नहीं कुछ मालूम नहीं होता है, शंखा में दुर्दल्य मान्य चित्त है, न इधर के वे न उधर वे, क्या हमने किया, भगवान है कि नहीं है ये भी ठीक से नहीं, एकदम संदेह लगा हुआ है। ऐसा सो अमर्ष, अमर्ष माने क्या, अमर्ष अमर्ष इस आदेश, लोगों से इस आदेश लगा हुआ है, बिना बात का बात, बिना बात का बतंगड़, इस आदेश हम लोगों के में परस्पर किस चीज लिए, इस आदेश किंतु नहीं, ये मच्छर, मच्छर है या मशा, ये मच्छर, अरे सुनो तो, मच्छर है ना वो, ये टिक टिकी उसको पकड़ने जा रहा, टिक टिकी को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता, कुत्ते को बाघ, बाघ को आदमी, आदमी को बिना बात का, वैसे हम इतने आदमी हैं ना, किसी से कुछ भी झगड़े का कोई कारण नहीं, मतभेद का कोई कारण नहीं, किंतु तो भी आदमी समझता कि हम अकेले हैं, किसी से कारण क्यों ना देने, क्या बनती है, सबके लिए नहीं कहता, जो ऐसे अमर्ष से भरे हैं उनके लिए। इसलिए शोक अमर्ष आदि, आदि माने काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य इत्यादि, जिनके जिनका हृदय इन भावों से आक्रांत है, जस मानव सम्मान सब समय इसी में लगा हुआ है, कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवे, ए खड़ा हो जाओ, खड़े होकर के सुनो, राधा रमण नाम तो ऐसा दे दिया है और सो रहा है, उठो में सो कामर्ष इत्यादि भाव इस साथ भरे पड़े हैं, उन लोगों में मुकुंद की स्फूर्ति की संभावना है, इसलिए इन सब चीजों को दूर करना चाहिए। ये छह वेगों के द्वारा मन असब वस्तुओं में चला जाता है, ऐसे दूसरी हृदय में भक्ति नहीं होती है, इसलिए हमको कहां जाना, उद्देश्य हमारा कहां है, पहले बतला श्रृंगार और हृदय ऐसा है तो कैसे होगा, इसके लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा, इधर में रुचि नहीं होनी चाहिए, इसलिए भक्ति प्रतिबंधक इन वेगों का दमन करने का उपदेश दिया गया है। कहते हैं जो साधक इन वेगों को सहन करने में समर्थ हो जाता है पृथ्वी का शासन कर सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है जो लोग भजन तो करते हैं किंतु इन सबको दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं तो उनका भजन कम, इसलिए हम लोगों को इसके लिए प्रयास भी करना चाहिए, कैसे, भवन नाम इत्यादि के द्वारा, भक्ति की बुद्धि के द्वारा इन सबको दूर करने की चेष्टा। बाघ गदगदा द्रवते जस्य चित्तम रुदत तभीक्षणम हसति क्वचित क्वचित च विलज्ज उद्गायते हेत्यते च मदभक्ति चित्तो भुवनम पुनः, श्रीमद्भागवत में ऐसा कहा गया है। कृष्ण करते समय में, हरिनाम करते समय जिनका बाघ गदगद हो जाता है, रुदत अभिक्षण, अभिक्षण माने सब समय आंखों श्वासों की धारा आती है, हसती क्वचित च उनकी लीलाओं का स्मरण करके कभी मन ही मन में हंसता है, कभी मुख से भी हंस देता है, अब विलज्ज लज्जा को छोड़ करके उद्गायन को उच्च स्वर से जहां तहां गायन करता, नित्य तेज और नित्य भी करने लगता है, ऐसा व्यक्ति मदभक्ति युक्त हो, हमारी भक्ति से युक्त ऐसे व्यक्ति भुवन को एकदम उद्धार कर देता है, अपना तो करता ही है विश्व को भी उद्धार कर देता है। यहां पर कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, इसकी टीका, यह जान लेना आवश्यक है कि उक्त छह वर्गों को सहन करने से भक्ति राज्य में प्रवेश करने का अधिकार मात्र प्राप्त होता है, ये भक्ति नहीं है। खेत में हल चला रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? घास काट उखाड़ करके निर्मल करके उसको पवित्र बनाने के। और यदि सारा जीवन खेत जोतते ही रह गए और सिंचाई करते रहे, बीज नहीं दिया, तो क्या होगा? कोई लाभ नहीं। ऐसे ये मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये भक्ति के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए ये भक्ति। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, इसी में रह जाते हैं, तो वो भक्ति नहीं है। यह भक्ति के साधन का साक्षात अंग नहीं, बल्कि भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए यह भी द्वार स्वरूप है, जैसे शरणागति है। भक्ति को भगवान की स्वरूप शक्ति की स्व प्रकाश वृत्ति होने के कारण उसका प्रादुर्भाव होने पर ये विषम स्वतः ही शांत हो जाते हैं। भक्ति जो है वो स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। जब तक वो हृदय में उदित नहीं होती है, तब तक अभी भक्ति नहीं है, तो अभी उसको भक्ति कहा जाता है, किंतु भक्ति नहीं है। भक्ति कब होगी? सर्व शक्ति की वृत्ति जब हृदय में प्रादुर्भूत हो जाएगी भाई, तब। अभी अभी हम लोग अभिमान ना ये करें कि अभी हमारी भक्ति स्वरूप सिद्धा भक्ति हो गई है, इसलिए इसकी संभावना है ये कहीं संग सिद्धा और कहीं आरोप सिद्धा भक्ति। संक्षेप में करूं, किंतु बहुत सी बातें जाननी आवश्यक है। भाव मौन तो है, और अपने आप स्लेट पर सब लिख करके, कागज पर लिख करके अपने भावों को बतलाता है, ये भी वही चीजें हैं, मानस वेद इत्यादि। मन का वेग दो प्रकार का होता है, अविरोध प्रीति और विरोध युक्ति क्रोध। अविरोध प्रीति मन का वेग दो हो, समझो इस चीज को, मन का वेग दो होता है। एक तो क्रोध होगा, कब? अपने मन के विरोधी बातें आने पर उसको क्रोध होगा, और अपने मन के अनुकूल चीजें आने पर उससे प्रीति रहेगी। ये दोनों ही भक्ति के लिए बात है। क्या बतलाया? बतलाइए तो, क्या बतलाया? बोलो बोलो जल्दी।
हाँ,
समझो फिर से, हमारे मन के अनुकूल जो बातें हैं, हमारे इंद्रियों के लिए जो प्रीतिकर हैं, उनमें प्रीति रखना ये मन का वेग है, और अपने मन के विरुद्ध जो बातें आते हैं तो उसमें क्रोध हो जाता है, ये भी मन का वेग है।
दोनों भक्ति के
प्रतिकूल, विषयों में मन लगाना, विषयों से क्रोध करना। जैसे रसोई बना रहे हैं ठाकुर जी के लिए, और चूल्हा जल नहीं है, गीली लकड़ी है, एक घड़ा पानी ले आया और चूल्हे पर एक लाठी सोटा लगा दिया और ऊपर से पानी डाल दिया, लोक पेगा, ये भी क्रोध है, ये भक्ति का विरोधी है। और अपने लिए बस से सुंदर चीजें बना रहे हैं, ठाकुर जी का पीछे बने, पहले हमारा बन जाए, तो ये भी, ये दोनों बातें हैं। इसलिए अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध, मायावाद विश्वास के प्रति प्रीति, कर्मों के प्रति और कर्मियों के प्रति प्रीति, कर्म और कर्मी दोनों के प्रति प्रीति यदि हो ना, कर्मी कौन? विषय में लवलीन है, उनके यहां जाकर के बड़े प्रेम से मिलते हैं, किस लिए मिलते हो? कारण कुछ है ना। वैष्णव से प्रीति यहां पर नहीं है, क्यों? अब विषयों से प्रीति है, यहां पर तो हरि कथा को सुनने में हमारा सुधार है, उनसे प्रीति नहीं है, किंतु उनसे प्रीति है, ये ठीक नहीं है, भगवत भक्ति का विरोधी है। अन्य अभिलाष रखने वाले व्यक्तियों के प्रति विश्वास ये हमारा सहायता करेगा, वो बात सहायता करेगा ना, वैष्णव लोग सहायता करेंगे, यह तीन प्रकार की अविरोध प्रीति है। कौन कौन? मैं बात के जिनका विश्वास है उनको आदर करना, कर्मी लोगों के प्रति आदर करना, और कृष्ण सेवा के अतिरिक्त दूसरी अभिलाषा वाला व्यक्तियों के प्रति ये विश्वास रखना, ये हमारा ये कुछ सहायता मेरी करेगा। ये तीन प्रकार की अविरोध प्रीति है। कर्मी ज्ञानी अन्नाभिलाषी की चेष्टाओं को देख करके निरपेक्ष रहना मन का व्यक्त अविरोध प्रीति है। कर्मी ज्ञानी अन्नाभिलाषी चेष्टाओं को देख करके निरपेक्ष रहते हैं। निरपेक्ष माने क्या? ज्ञानी दो होने दो, हमारा इससे क्या? ऐसा नहीं, भगवत प्रतिकूल यदि बातें हैं तो उनसे दूर रहने की चेष्टा करो, वहां पर तटस्थ मत रहो। कोई मंदिर में आकर के कुछ कर रहा है, चोरी कर रहा है, भक्ति का विरोधी काम रहा है, उस समय तटस्थ रहेंगे? गुरु जी की निंदा कर रहा है, जाने दो कर रहा है तो क्या कर रहा है, उसमें क्या होना चाहिए? जीवा काट देनी चाहिए, नहीं तो स्तंभित कर। इसलिए भक्ति के संबंध में भक्ति का विरोधी कोई कर रहा हो और हम तटस्थ हैं तो ये भक्ति का ही विरोधी है। ये शरीर के वेग तीन प्रकार के हैं, जीवा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग। स्वरस के अंतर्गत किसी भी रस का आस्वादन करने की लालसा से उत्तेजित होकर के पशुओं के मांस, मछली, अंडे, अत्यधिक घी, दूध, रबड़ी, मलाई, ये सब चीजों का, रबड़ी ले आएंगे ऊपर में क्या होता है रबड़ी के ऊपर वाला, हाँ सर मलाई, ये सब ले आकर के खुरचन खुरचन ये सब अपने लिए लेते हैं, दूसरों को किसी को छूने नहीं देंगे, चूहा भी ना ले सके, चींटी भी उस पर न मारे, तो ये सब क्या होगा? ऐसे ही सब चीजों को, ये भोजन की लालसा को जीवा दे करते हैं।